सप्ताह भर की क्रिकेट गतिविधियों को समेटे आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूं। स्वीकार कीजिए संजय बैनर्जी का नमस्कार। सुनो दिल से। सुरमाओं से सजी टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका में नया इतिहास बनाने की नीयत से उतरी थी। बहुत कुछ साबित करना था इस टीम को। कप्तान कोहली अब भी दुनिया के सबसे कामयाब कप्तान हैं। राहुल द्रविड़ के आने के बाद टीम इंडिया में अलग ही निखार है। और फिर प्रोटीज इस टीम को लेकर क्या जीतेंगे। लेकिन कहानी में बड़ा ट्विस्ट आया और पहले टेस्ट में जीत के बाद संजोए गए सपने रेत के महल की तरह धराशायी हो गए। जिस पिच पर मेजबान रन बना रहे थे और गेंदबाज विकेट ले रहे थे, उस पर भारतीय खिलाड़ियों से न तो रन जुट रहे थे और न ही विकेट खाते में आ रहे थे। ये सब कुछ उस भारतीय टीम के साथ हुआ जिसकी बेंच स्ट्रेंथ सबसे मजबूत मानी जाती रही है। हो सकता है बेंच मजबूत हो, लेकिन टीम तो कमजोर ही नजर आई। दूसरा टेस्ट भारत हारा तो सर छुपाने के लिए तर्क तैयार था। लोकेश राहुल नए कप्तान हैं, लेकिन अब तो कप्तान साहब ने भी घुटने टेक दिए। मेजबान खिलाड़ियों ने साबित किया कि खेल में नाम नहीं काम जीत दिलाता है। दक्षिण अफ्रीका के लिए आखिरकार कीगन पीटरसन के अलावा कप्तान डीन एल्गर और तेम्बा बावुमा ने दिखाया कि अगर वे टीम के सीनियर प्लेयर्स हैं तो उनका प्रदर्शन भी उसी के अनुरूप है। यही काम उनके तीनों नामी गेंदबाजों कगिजो रबाडा, लुंगी एनगिडी और मार्को यानसेन ने भी किया। इसके उलट भारतीय टीम में एक से बढ़कर एक नाम थे, लेकिन इक्का दुक्का प्रदर्शन कर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी समझ ली। कल्पना कीजिए, अगर ऋषभ पंत ने दूसरी पारी में शतक नहीं लगाया होता तो क्या होता। पंत पिछले टेस्ट में गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर आउट हुए थे, लेकिन इसमें शतक ठोक गए। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि ऋषभ पंत की यह सेंचुरी सिडनी और ओवल के मुकाबले कहीं ज्यादा आकर्षक थी। पिछले एक साल में भारतीय टीम के प्रदर्शन में गिरावट का ग्राफ साफ नजर आया है। भारतीय बल्लेबाजी का आलम यह है कि 6 पारियों में केवल एक बार वो 300 रन का आंकड़ा छू सकी है। पिछले लगभग 12-13 महीने में जिन 24 कंप्लीट इनिंग्स में भारत ने बल्लेबाजी की, उसमें 7 बार उसने 200 रन का आंकड़ा भी टच नहीं किया। इससे साफ पता चलता है कि टीम इंडिया को जिस बल्लेबाजी पर नाज था, वो पक्ष अब कमजोर साबित हो रहा है। जहां कोहली, राहुल, पुजारा, पंत और रहाणे जैसे बल्लेबाज मौजूद हों, उस टीम का ऐसा हश्र निसंदेह दुखद है। क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्पररी की कहावत ने न जाने कितने क्रिकेटर्स की अकर्मण्यता को छिपाया है। आखिर अगर कोई फॉर्म में नहीं है तो कब तक उसे टीम में होना चाहिए। बेंच स्ट्रेंथ क्या सिर्फ बेंच पर बैठने के लिए है। रहाणे और पुजारा को लेकर कोई नया नजरिया सामने आएगा या फिर उनके फॉर्म में आने की प्रतीक्षा की जाएगी। हनुमा विहारी जैसे क्रिकेटर कहीं बेंच से ही रिटायर भी ना हो जाएं। द्रविड़ क्या इस सोच पर काम करेंगे या सब कुछ पहले की तरह बदस्तूर जारी रहेगा। विराट कोहली ने बल्लेबाजी में खुद को जरूर इंप्रूव किया है, लेकिन कप्तानी में रंग नहीं छोड़ पा रहे हैं। दूसरे और तीसरे टेस्ट में भारतीय गेंदबाजी की धार भी कुंद दिखाई दी। मेजबान बल्लेबाज रन बनाते गए और लक्ष्य को आसानी से हासिल करते गए। शायद हम दक्षिण अफ्रीका को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले गए। पिछले साल मजबूत ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर पर हराया और इस बार दक्षिण अफ्रीका को कमजोर समझा तो मुंह की खा गए। करेला और नीम चढ़ा की कहावत पूरी करते हुए सीरीज के अंत में कोहली का स्टंप माइक पर अनर्थक बोलना और साथ में लोकेश राहुल का शामिल होना क्रिकेट जैसे खेल के लिए कतई ठीक नहीं हो सकता। कोहली इस तरह की हरकतों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन लोकेश राहुल का व्यवहार चौंकाने वाला है। वैसे मैच के बाद कोहली का ये कहना कि हम जानते हैं कि मैदान पर क्या हुआ और बाहर बैठे लोगों को पता नहीं होता कि मैदान पर क्या चल रहा है, बताता है कि टीम इंडिया के लिए हार हजम करना कितना मुश्किल है। फैसला गलत हो सकता है, लेकिन उसके निदान का तरीका ये कतई नहीं हो सकता। दोनों देशों के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज अगले हफ्ते शुरू हो रही है, जिसके लिए भारतीय टीम के बचे हुए प्लेयर्स दक्षिण अफ्रीका पहुंच चुके हैं। वॉशिंगटन सुंदर को कोरोना पॉजिटिव होने के कारण देश में ही रुकना पड़ा। अब उनकी जगह टेस्ट स्क्वाड के सदस्य रहे जयंत यादव को वनडे टीम में शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा टेस्ट टीम से नवदीप सैनी को भी वनडे टीम में जगह मिली है, क्योंकि मोहम्मद सिराज चोटिल हैं। सिराज इसी कारण तीसरे टेस्ट में नहीं खेल सके थे। विराट कोहली टीम में हैं, पर रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में देखना होगा कि वनडे सीरीज में लोकेश राहुल की कप्तानी में भारत का प्रदर्शन किस तरह का होता है। सीरीज के मुकाबले 19, 21 और 23 जनवरी को खेले जाएंगे। कोरोना के कारण भारत का घरेलू क्रिकेट पहले ही स्थगित हो चुका है। अंडर 19 का कूच विहार ट्रॉफी का क्वार्टर फाइनल चरण भी स्थगित कर दिया गया है। अब कोई नहीं बता सकता कि रणजी ट्रॉफी समेत तमाम स्थगित टूर्नामेंट कब शुरू होंगे। पिछले सत्र में भी केवल 3 प्रतियोगिताएं ही हो पाई थी। वैसे अंडर 19 प्लेयर्स का वर्ल्ड कप कल से वेस्टइंडीज में शुरू हो रहा है। भारत को ग्रुप बी में दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड और युगांडा के खिलाफ मैच खेलना है। भारत अपने अभियान की शुरुआत आज ही गयाना में साउथ अफ्रीका के साथ खेलकर करेगा। इसके बाद 19 जनवरी को आयरलैंड और 22 जनवरी को उसे युगांडा से खेलना होगा। पिछले पखवाड़े ही एशिया कप का खिताब जीतने वाली भारतीय अंडर 19 टीम ने वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले अपने दोनों प्रैक्टिस मैच जीतकर मनोबल ऊंचा किया है। पहले अभ्यास मैच में भारत ने मेजबान वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हराया और दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया को आसानी से 9 विकेट से पीट दिया। इस मैच में ओपनर हरनूर सिंह ने शतकीय पारी खेली। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल फिलहाल द्विपक्षीय मुकाबले की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं देती, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी के चेयरमैन रमीज राजा ने एक नया प्रस्ताव दिया है। वो चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के साथ ऑस्ट्रेलिया व इंग्लैंड के बीच T20 मैचेस की एक सुपर सीरीज खेली जाए, जिससे होने वाली आय को मेंबर कंट्रीज के बीच बांटा जाए। अब देखना है कि रमीज राजा के इस प्रस्ताव को भारत और ICC कितना भाव देते हैं। ICC की ताजा टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली और रोहित शर्मा अभी भी अपनी जगह पर कायम हैं। रोहित 5वें और विराट कोहली 9वें स्थान पर हैं। गेंदबाजी में आर अश्विन दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। इस सूची के टॉप 10 में अश्विन के अलावा कोई दूसरा भारतीय गेंदबाज नहीं है। घरेलू क्रिकेट के स्थगन के बाद अब BCCI के लिए IPL पर ध्यान लगाना ज्यादा आसान हो गया है। इसके लिए तैयारियां जारी हैं। इसी क्रम में सबसे बड़ा बदलाव टाइटल स्पॉन्सर के रूप में हुआ है। वीवो की जगह टाटा अब IPL का प्रायोजक होगा। 2 साल के प्रायोजन से BCCI को लगभग 1124 करोड़ रुपए मिलेंगे। खबर यह भी है कि अगर कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण IPL भारत में आयोजित नहीं हुआ तो प्लान बी के तहत इसे दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जा सकता है। श्रीलंका को भी एक और विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। तो ये था सप्ताह भर की क्रिकेट गतिविधियों पर आधारित हमारा साप्ताहिक पॉडकास्ट सुनो दिल से। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक चलते रहिए न्यूज 18 के साथ। अनुमति दीजिए संजय बैनर्जी को। नमस्कार।